एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो है तो सदियों पुराना, लेकिन आज भी काफी बहसों और गहरे सवालों से घिरा हुआ है। शिकार, मतलब एक ऐसी गतिविधि जो कभी इंसान के वजूद के लिए जरूरी थी।
और आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे जेन ई डिजार्ड की किताब हंटिंग अ कल्चरल हिस्ट्री के जरिए। ये किताब शिकार को सिर्फ एक गतिविधि की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे समाज और संस्कृति के आईने की तरह देखती है एक तरह से।
बिल्कुल। और ये जानना आज इसलिए दिलचस्प है क्योंकि शिकार से जुड़े मुद्दे सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी बदलती जीवन शैली, प्रकृति से हमारे रिश्ते और हाँ, संरक्षण की नीतियों तक फैले हुए हैं।
सही कहा।
और यहीं पर एक हैरान करने वाली पहेली सामने आती है कि जिन लोगों के हाथों शिकार की वजह से वन्य जीव तबाही के कगार पर पहुंचे, वही लोग आगे चलकर उनके सबसे बड़े मसीहा कैसे बन गए।
हाँ, ये विरोधाभास यही इस किताब की जान है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे।
तो पहले लेखक की बात कर लें, जेन ई डिजार्ड।
हाँ, जेन ई डिजार्ड एमहर्स्ट कॉलेज में अमेरिकी संस्कृति और समाजशास्त्र के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, मतलब एक सम्मानित रिटायर्ड प्रोफेसर जो अब भी अकेडमिक दुनिया से जुड़े हैं। उनकी खास दिलचस्पी रही है पर्यावरण समाजशास्त्र और अमेरिकी समाज के ताने बाने को समझने में।
अच्छा, और जो बात डिजार्ड के नजरिए को वाकई अनोखा बनाती है वो ये है कि वो सिर्फ किताबी विद्वान नहीं है।
सही।
वो खुद सालों तक शिकारी रहे हैं, तो उनके पास एक अंदरूनी बाहरी समझ है। वो जानते हैं कि शिकारी क्या सोचता है, क्यों शिकार करता है।
हाँ, और साथ ही एक समाजशास्त्री के तौर पर वो दूरी बनाकर इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं।
बिल्कुल।
ये दोहरा नजरिया उन्हें मदद करता है शिकार से जुड़े गहरे रिवाजों, मतलबों और सामाजिक ढांचों को परत दर परत खोलने में। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी कि ऐसा क्यों हो रहा है और समाज के लिए इसके क्या मायने हैं।
मतलब एक संतुलित दृष्टिकोण।
हाँ, उनकी अकादमिक ट्रेनिंग उन्हें भावनाओं से परे जाकर विश्लेषण करने की क्षमता देती है।
अच्छा, तो फिर इस किताब का निचोड़ क्या है, मतलब क्या कहती है ये किताब?
सीधे शब्दों में कहें तो ये किताब अमेरिका में आधुनिक समय के शौकिया शिकार के पीछे छिपे गहरे सांस्कृतिक उतार चढ़ाव और विरोधाभासों को समझने की कोशिश करती है।
ओके।
हाँ, ये पूछती है कि शिकार जो कभी पेट भरने की मजबूरी था, वो आज कैसे एक जटिल, नियमों में बंधा और अक्सर विवादों में घिरा शौक बन गया। शौक बना, फिर अमेरिकी आज़ादी का प्रतीक बना, फिर बाजार के लालच में विनाश का कारण, और फिर यही सबसे हैरानी की बात है, वन्य जीव संरक्षण आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन गया।
वाह, मतलब कहानी पूरी घूम गई।
बिल्कुल। किताब दिखाती है कि कैसे शिकारियों ने ही वो नियम कायदे और पैसे जुटाने के सिस्टम बनाए जिनसे कई जानवरों की प्रजातियां खत्म होने से बच गईं।
तो ये किताब उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढती है कि आज के इस दौर में जहाँ खाना सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाता है, लोग फिर भी शिकार क्यों करते हैं।
हाँ, और कैसे ये काम जो बाहरी तौर पर तो विनाशक लगता है, उत्तरी अमेरिका में वन्य जीवों को बचाने की बुनियाद बन गया।
गजब है।
डिजार्ड हमें एक तरह की ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाते हैं। यूरोप में शिकार कैसा था, अमेरिका आने पर कैसे बदला, कैसे बाजार के शिकारियों ने तबाही मचाई।
अच्छा।
और फिर कैसे शिकारी ही बचाने वाले बनकर उभरे। ये सिर्फ शिकार का इतिहास नहीं, ये अमेरिका का अपनी जमीन और जानवरों के साथ बदलते रिश्ते की कहानी भी है।
चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, किताब के अलग अलग हिस्सों के जरिए। पहला पड़ाव है पुरानी दुनिया और नई दुनिया। यूरोप में शिकार क्या था?
यूरोप में ज्यादातर तो ये राजाओं और जमींदारों का खेल था, उनकी ताकत और शान दिखाने का तरीका। आम आदमी के लिए शाही जंगल में शिकार करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना, मना था उनके लिए।
सही। तो अमेरिका में क्या बदला?
लेकिन जैसे ही यूरोप के लोग अमेरिका पहुंचे, माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ जमीन खुली थी, जानवर बेशुमार थे और कोई राजा नवाब नहीं था जिसका उन पर हक हो।
अच्छा।
शिकार यहाँ आम आदमी का अधिकार बन गया। ये पुरानी दुनिया की बंदिशों को तोड़ने और नई दुनिया की आजादी, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया।
मतलब फ्रंटियर स्पिरिट जिसे कहते हैं।
हाँ, खासकर सरहदी इलाकों में तो ये पहचान का हिस्सा था। शिकार अब सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आजादी का एहसास दिलाने वाली चीज थी।
पर जैसा अक्सर होता है, ये बेलगाम आजादी और प्रचुरता हमेशा नहीं टिकती।
बिल्कुल नहीं।
किताब का अगला हिस्सा में ले जाता है प्रचुरता और विनाश के दौर में, 19वीं सदी।
हाँ, 19वीं सदी में अमेरिका तेजी से फैल रहा था। शिकार का ये लोकतांत्रिक अधिकार जब बाजार के लालच और नई टेक्नोलॉजी जैसे रेल और बेहतर बंदूकें से मिला तो नतीजा भयानक निकला। पारिस्थितिकी के नजरिए से ये एक आपदा थी।
यहीं पर एंट्री होती है मार्केट हंटर्स की, बाजार के शिकारी।
सही पकड़ा, मार्केट हंटर्स। इनका मकसद खेल या जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। डिजाइट बताते हैं कैसे लाखों अमेरिकन बाइसन यानी जंगली भैंसे सिर्फ उनके खाल के लिए मार दिए गए।
ओह,
हाँ, जिससे वो लगभग खत्म ही हो गए। पैसेंजर पिजन नाम का कबूतर जो कभी आसमान में झुंड के झुंड में उड़ता था,
सुना है उसके बारे में?
वो पूरी तरह विलुप्त हो गया। पानी के पक्षी, हिरन, सबका यही हाल हुआ क्योंकि शहरों में सस्ते मांस की भारी मांग थी। यह हिस्सा साफ दिखाता है कि शुरुआती अमेरिकी मॉडल टिकाऊ नहीं था और इसने एक बड़े संकट को न्योता दिया था।
और यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है जो इस किताब का दिल है, अप्रत्याशित उद्धारकर्ता का सामने आना।
बिल्कुल,
वन्य जीवों को बचाने की आवाज कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि शिकारियों के अपने ही खेमे से उठी। लेकिन ये वो बाजार वाले शिकारी नहीं थे।
नहीं नहीं ये ज्यादातर अमीर पढ़े लिखे खेल शिकारी थे जिन्हें इस बर्बादी को देखकर चिंता हुई।
अच्छा, कौन थे ये लोग?
यहाँ थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नाम सामने आते हैं। खुद एक जोशीले शिकारी, लेकिन अमेरिका के सबसे प्रभावशाली संरक्षणवादी राष्ट्रपतियों में से एक।
हाँ, रूजवेल्ट का नाम तो सुना है संरक्षण के मामले में।
जॉर्ज बर्ट ग्रिनेल, जो फॉरेस्ट एंड स्ट्रीम नाम की मशहूर पत्रिका के संपादक थे, उन्होंने बाजार शिकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी। इन जैसे लोगों ने मिलकर बून एंड क्रॉकेट क्लब जैसे संगठन बनाए।
बूने एंड क्रॉकेट क्लब।
हाँ, ये उस समय के प्रभावशाली शिकारी और संरक्षणवादी नेताओं का एक समूह था और जिसने नियमों को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई।
दिलचस्प। तो इनकी प्रेरणा क्या थी, मतलब क्यों किया इन्होंने ये सब?
ऐसा लगता है दोहरी थी। एक तो ये कि वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शिकार करने लायक जानवर बचे रहें, अपना शौक बचा रहे।
स्वार्थ भी था।
हाँ, और दूसरा, वो शिकार को एक नैतिक दायरे में लाना चाहते थे जो बाजार के शिकारियों के पास बिल्कुल नहीं था। यहीं से खेल शिकारी की नीति या एथिक्स ऑफ स्पोर्ट हंटिंग का विचार पैदा हुआ कि शिकार सिर्फ मारने का नाम नहीं बल्कि नियमों, सम्मान और चुनौती का खेल है।
तो ये खेल शिकारी सोच तो आ गए, पर सिर्फ सोच से क्या होता है? इसे जमीन पर कैसे उतारा गया? कैसे इसे कानून और नियमों का हिस्सा बनाया गया?
बिल्कुल, यहीं पर बात आती है संरक्षण को संहिताबद्ध करने की, यानी उसे व्यवस्थित रूप देने की। इसी सोच से निकला उत्तरी अमेरिकी वन्यजीव संरक्षण मॉडल।
अच्छा, ये मॉडल क्या था?
इस मॉडल की बुनियाद कुछ अहम सिद्धांतों पर रखी गई, जैसे वन्यजीव किसी की निजी संपत्ति नहीं बल्कि सबका साझा खजाना है, मतलब पब्लिक रिसोर्स।
ठीक है।
इनका प्रबंधन विज्ञान के आधार पर सरकार करेगी सबके फायदे के लिए, और सबसे जरूरी, वन्यजीवों का बाजार के लिए शिकार बंद किया जाएगा, कमर्शियल हंटिंग खत्म।
लेकिन इस सब काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये एक बड़ा सवाल था।
बिल्कुल, और इसका जवाब भी शिकारियों से ही जुड़ा है। पिटमैन रॉबर्टसन एक्ट 1937 का, ये एक बड़ा कानून था।
पिटमैन रॉबर्टसन एक्ट?
जी।
क्या था इसमें?
इसके तहत बंदूकों और कारतूसों की बिक्री पर एक टैक्स लगाया गया और इस टैक्स से जमा हुआ सारा पैसा सीधे राज्यों को वन्यजीव संरक्षण और उनके रहने की जगहों, हैबिटेट को बेहतर बनाने के लिए दिया जाने लगा।
अरे वाह,
ये एक कमाल का यूजर पेज पब्लिक बेनिफिट्स मॉडल था, यानी जो इस्तेमाल करता है वो भुगतान करे और फायदा सबको मिले।
गजब का आइडिया।
हाँ, आज भी अमेरिका में वन्यजीव संरक्षण का एक बड़ा हिस्सा इसी पैसे से चलता है।
और वो फेयर चेज वाली बात?
हाँ, साथ ही फेयर चेज यानी उचित पीछा की नैतिकता को भी औपचारिक रूप दिया गया। ये नियमों का एक सेट था जिसने खेल वाले शिकार को सिर्फ जानवरों को मारने से अलग किया।
मतलब कैसे?
इसका मतलब था कि जानवर को भागने या बचने का एक वाजिब मौका मिलना चाहिए, शिकार में चुनौती होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसा ना हो कि जानवर बिल्कुल असहाय हो जाए। ये नैतिक कोड शिकार को बदलते समाज में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ।
किताब का आखिरी हिस्सा हमें आज के दौर में लाता है, आधुनिक शिकार, संघर्ष और विरोधाभास। डिजार्ड कहते हैं कि संरक्षण के क्षेत्र में इतनी सफलता पाने के बावजूद आज शिकार खुद अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है।
हाँ, ये भी एक विरोधाभास है, और इसकी वजह है समाज में आए बड़े बदलाव।
जैसे?
जैसे शहरों और उपनगरों का बढ़ना, आज ज्यादातर लोग प्रकृति और भोजन कैसे पैदा होता है इस सच्चाई से बहुत दूर हो गए हैं। सुपरमार्केट में प्लास्टिक में लिपटा मांस हमें उस पूरी प्रक्रिया से काट देता है ना?
बिल्कुल, पता ही नहीं चलता कहां से आया।
इसके साथ ही पर्यावरण और पशु अधिकारों को लेकर नए आंदोलन खड़े हुए हैं, जो अक्सर शिकार को क्रूर और गैर जरूरी मानते हैं। इसे कभी कभी मजाक में बैम्बी सिंड्रोम भी कहते हैं, डिज्नी की उस मशहूर फिल्म के नाम पर।
हाँ, जिसने हिरणों को बहुत मासूम और इंसानी भावनाओं वाला दिखाया।
सही।
इतना ही नहीं, अब तो शिकारियों के अपने समुदाय में भी फूट पड़ गई हैं।
हाँ बिल्कुल, सिर्फ सींग या खाल के लिए शिकार, जिसे ट्रॉफी हंटिंग कहते हैं, या जानवरों को चारा डालकर अपनी तरफ खींचना, बेटिंग जिसे कहते हैं, या बहुत ज्यादा हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल, इन सब बातों पर तीखी बहसें होती हैं। तो किताब इस सवाल के साथ खत्म होती है कि शिकार का भविष्य क्या है, क्या आज की इस शहरी दुनिया में ये अपनी जगह बचाए रख पाएगा।
चलिए अब इस पूरी चर्चा से निकले कुछ खास मुद्दों और संदेशों को समेटते हैं। सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला मुद्दा तो मेरे लिए वही है, शिकारी संरक्षणवादी का विरोधाभास।
हाँ बिल्कुल, ये सोचना ही कितना अजीब है कि जिन लोगों ने जानवरों को लगभग खत्म कर दिया था, वही उनके सबसे बड़े हिमायती बन गए। रूजवेल्ट जैसे लोग, बूने एंड क्रॉकेट क्लब, और वो पिटमैन रॉबर्टसन एक्ट, ये सब इसी विरोधाभास के उदाहरण हैं।
बिल्कुल। दूसरा अहम सबक है, शिकार के मायने कैसे बदलते रहे हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
सही बात। यूरोप में ये ताकत का निशान था, अमेरिका में आजादी का, फिर लालच का प्रतीक बना, फिर नियमों में बंधा खेल, और आज एक विवादित गतिविधि। ये दिखाता है कि किसी भी चीज का मतलब समाज और समय के साथ कैसे बदलता है।
तीसरा, फेयर चेज नैतिकता का बनना, ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक तरह का, क्या कहें, सांस्कृतिक आविष्कार था।
हाँ, एक कल्चरल इन्वेंशन। शिकारियों ने खुद पर सीमाएं लगाई ताकि शिकार को नैतिक आधार मिल सके और वो समाज में स्वीकार्य बना रहे। ये दिखाता है कि कैसे कोई समुदाय खुद को अनुशासित करके अपनी सामाजिक जगह बनाए रख सकता है।
चौथा, शहरी ग्रामीण दूरी और प्रकृति से कट जाना।
हाँ, डिजार्ट का तर्क है कि शिकार का आज जो विरोध होता है उसका एक बड़ा कारण ये है कि शहरों में रहने वाली ज्यादातर आबादी का प्रकृति और जीवन मृत्यु के चक्र से सीधा वास्ता टूट गया है। जब हमारा खाना पैक होके आता है तो शिकार की वास्तविकता हमें झकझोर देती है। ये बात शायद भारत में भी महसूस की जा सकती है। बड़े शहरों में रहते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा अन्न, सब्जी, दूध या मांस कहाँ से और कैसे हम तक पहुँचता है।
बिल्कुल सही कहा। और पांचवा?
और पांचवा अहम विचार है वन्यजीव सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक ट्रस्ट। ये अमेरिकी सोच बहुत क्रांतिकारी थी। इसने कहा कि जंगली जानवर न तो किसी व्यक्ति की निजी जागीर है, न ही सिर्फ बाजार में बिकने वाली चीज, वो सबकी साझी विरासत है।
अच्छा।
और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की है, सबके भले के लिए। इसी सोच ने जानवरों के व्यावसायिक शोषण पर रोक लगाने का आधार तैयार किया।
किताब में कई ऐसी बातें जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास विचारों पर गौर करते हैं जो कोट करने लायक हैं एक तरह से।
हाँ, जैसे ये कहना कि उत्तरी अमेरिकी वन्य जीव संरक्षण जानवरों के प्रति किसी भावुक प्रेम से नहीं, बल्कि शिकारियों के अपने स्वार्थ से पैदा हुआ था, जो अपने खेल का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे।
सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे।
हाँ, लेकिन ये दिखाता है कि संरक्षण की शुरुआत आदर्शवाद से ज्यादा व्यवहारिकता पर टिकी थी।
ये वाकई दिलचस्प है। मतलब अच्छे नतीजे हमेशा नेक इरादों से ही नहीं आते, कभी कभी अपने हित साधने की कोशिश भी अनजाने में बड़े भले का काम कर जाती है। फिर एक और विचार है, फेयर चेस की नैतिकता एक शानदार सांस्कृतिक आविष्कार था। इसने हत्या के क्रूर कार्य को आत्मसंयम से चलने वाले एक जटिल अनुष्ठान में बदल दिया।
ये कमाल की बात है कि कैसे नियमों और नैतिकता ने एक हिंसक काम का चेहरा ही बदल दिया। फेयर चेज ने शिकार को सिर्फ मारने से ऊपर उठाकर कौशल, धीरज और चरित्र की परीक्षा बना दिया।
हाँ सही। और तीसरा ये कि शिकार का आधुनिक विरोध वन्यजीव प्रबंधन पर बहस से कम और बहुसंख्यक आबादी का जीवन और मृत्यु की परिस्थितिक सच्चाइयों से गहरा अलगाव ज्यादा दर्शाता है।
ये तो सीधा इशारा है कि ये लड़ाई सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे समाज के अंदर की गहरी दरार के बारे में है।
हाँ, प्रकृति से हमारा नाता कितना कमजोर हो गया है, ये उसका लक्षण है। हम चीजों को टुकड़ों में देखते हैं, एक पूरे सिस्टम की तरह नहीं।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या सोच पर क्या असर पड़ सकता है?
हाँ, क्या सीख सकते हैं हम इससे?
कई तरह से। अगर हम नीतियों की बात करें तो ये किताब सिखाती है कि पर्यावरण बचाने के लिए सबको साथ लेकर चलना कितना जरूरी है, जिसमें वो लोग भी शामिल हों जो उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शिकारी। सिर्फ विरोध करने से शायद बात न बने।
और आपसी समझ बढ़ाने के लिए भी ये जरूरी है ना? ये हमें मदद करती है कि हम शिकार पर होने वाली बहसों में दोनों पक्षों को बेहतर समझ सकें बिना किसी पूर्वाग्रह के। हर पक्ष के अपने तर्क और अपना इतिहास होता है।
ये हमें अपने खाने के सिस्टम पर भी सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ औद्योगिक खेती है, जहां जानवरों को अक्सर बहुत सीमित और अमानवीय हालात में पाला जाता है। दूसरी तरफ शिकार है,
हाँ,
जहां जानवर अपनी प्राकृतिक जिंदगी जीता है लेकिन अंत हिंसक होता है। दोनों के नैतिक पहलू क्या हैं? क्या सुपरमार्केट से खरीदा गया मांस शिकार में मारे गए जानवर के मांस से ज्यादा नैतिक है? ये किताब सीधे जवाब नहीं देती, पर सवाल जरूर खड़े करती है।
ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और वो फेयर चेस का आइडिया, क्या वो दूसरे फील्ड्स के लिए भी मिसाल बन सकता है?
बिल्कुल। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सही गलत इस्तेमाल पर बहस चल रही है, फेयर चेस दिखाता है कि कैसे कोई समुदाय या इंडस्ट्री खुद नियम बनाकर गलत इस्तेमाल को रोक सकती है, इससे पहले कि बाहर से सख्त कानून थोपे जाएं। सेल्फ रेगुलेशन,
हाँ, स्वनियमन। आखिर में ये हमें प्रकृति से हमारे अपने रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल। क्या हम प्रकृति को सिर्फ एक सुंदर तस्वीर की तरह दूर से देखते हैं या खुद को उसका हिस्सा मानते हैं? क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या उसमें भागीदार?
मेरे लिए इस किताब से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो है शिकारी संरक्षणवादी विरोधाभास की गहराई।
हाँ, मेरे लिए भी।
ये जानना कि अमेरिका में संरक्षण आंदोलन की जड़ें शिकारियों के स्वार्थ में थी और फिर भी ये मॉडल इतना कामयाब रहा, ये वाकई हैरान करता है। साथ ही आज के समाज का प्रकृति से अलगाव कितना बढ़ गया है, ये बात भी बहुत साफ हो जाती है।
और मुझे जो पहलू सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया वो है फेयर चेज नैतिकता का बनना। ये देखना कि कैसे इंसानों ने खुद पर लगाम लगाई, सिर्फ मारने को नहीं बल्कि चुनौती और नियम कायदों को महत्व दिया। ये सांस्कृतिक विकास का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है।
हाँ,
और ये भी कि शिकार के मायने कैसे बदलते रहे हैं, ये याद दिलाता है कि संस्कृति कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। जो आज हमें सही या गलत लगता है, जरूरी नहीं कि हमेशा से वैसा ही रहा हो या आगे भी वैसा ही रहेगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।